भगवान तो हटे नहीं, पर इसके आभास अलग अलग करके जितने भी वृक्ष थे ये सब चूर चूर होकर गिरने लगे, छटपटा रही थी वो भगवान की लीला शक्ति का खेल। वो 6 कोस लंबा उद्यान था कंस का, उस उद्यान में बड़े सुंदर सुंदर फलों वाले बड़े बड़े वृक्ष थे, बढ़िया बढ़िया आम और बढ़िया बढ़िया चीजें होती थी, पर बगीचा कंस का था ना, बगीचा रहा कंस का, तो उसकी उसके वृक्ष का कोई भी फल देवता के भगवान के काम नहीं आते। तो वो मानो वृक्ष फिर सारे ही निष्फल थे, उन वृक्षों में भी आखिरी भाव आ गया था। भगवान ने सोचा कि इनका फल कभी कंस के मरने के बाद कोई खाएगा तो असुर हो जाएगा, वो भी असुर भावापन्न। जहाँ ऐसी लीला होती है और जो चीज असुरों के काम में आती है उसमें असुर भाव आ जाता है। आजकल वाले जो मानते हैं, जो थॉट पावर मानते हैं विचार शक्ति को, वो मानते हैं कि विचारों का प्रभाव जड़ वस्तुओं पर भी होता है। तो यहाँ पर इस कंस के बगीचे में या तो होती आसुर लीला या असुरों के काम में आते। तो ये टीकाकार लिखते हैं कि भाई ये बच्चों के भी, जमीन के भी, फलों पुष्पों के भी सौभाग्य दुर्भाग्य हुआ करते हैं, इनके भी पुण्य पाप हुआ करते हैं। किसी किसी वृक्ष के फल, उसके पत्ते, उसके फूल भगवान की सेवा में आते, उसकी छाया में भगवत भक्त लोग बैठ के विश्राम करते, उसके नीचे भगवान की कथा होती है, चर्चा होती है, उसका काश भगवान के मंदिरों में जाकर के किवाड़ बनता है। एक ही कर इतना भाग्यशाली होता है जो भगवान का सिंहासन बनता है। किसी किसी काश के द्वारा भगवान का नैवेद्य काट बनता है जल कर, तो वो बड़ी बड़े भाग्य की चीज है। और कई वृक्ष ऐसे भाग्यहीन होते हैं कि उनकी उनकी सब चीजों का उपयोग भोगियों के काम में आता है। इनका कोई झूला बनता है, वेश्याओं का झूला बनता है, विलासी लोगों की सामग्री बनती है, दौर्मुख जीव जो है भोगा शक्ति, इन्हीं के काम में वो सब चीजें आती हैं। तो केवल मनुष्य ही नहीं, जो जीव सर्व लोकेश्मन दैव आसुर विष्णु भक्ति परो दैव आसुर शब्द पर गया है, जो प्रकार की सृष्टि है जिसका संबंध भगवान से, वो तो वस्तु दैव वस्तु दैवी वस्तु, चाहे वो आदमी हो, प्राणी हो, चाहे कोई जीव जंतु हो, और चाहे कोई वृक्ष लता पहाड़ पेड़ मकान घर जमीन तालाब हो, जो भगवान के काम में आवे, जिसका संबंध भगवान से हो जाए वो तो दैव, और जिसका संबंध असुर से हो जाए वो आसुर। इसलिए ये जो बगीचा रहा ये आसुर भावापन्न बगीचा था, इसमें सारी चीजें जो थी वो आसुरी चीज थी। इसमें आने वाले को असुर भाव हो जाए, इस बगीचे में प्रवेश करे तो करते ही मन में आसुरी भाव पैदा हो, तो इसलिए भगवान ने सोचा इसका तो नाश ही कर देना ठीक है। पर नाश करने के साथ साथ एक बात उनके मन में हो रही, तो भगवान नाश करके उद्धार करते हैं, इस बगीचे में जो वृक्षादी में जीव हैं, जो भी वृक्ष बने हुए हैं, तो उनको आज क्या होगा कि भगवान ने क्या किया, जरा सा अपने चरणों को लंबा करके पूछना के बदन से थोड़ा सा नीचे नीचे झुका दिया, तो कहा कि हमारे चरणों का स्पर्श हो जाएगा। तो भगवान पूछना की छाती पर खेल रहे थे ना, तो पूछना के स्पर्श के साथ साथ उन बच्चों को स्पर्श प्राप्त हो गया, नंदनिंद बन गया, ये नीलमणि था। तो गोकुल के पास का उत्सव को उसका उद्यान ध्वंस हो गया, इसमें जो पहरेदार थे वो भी सब ध्वंस हो गए, और ये फिर इनको ध्वंस करके और भगवान इनका उद्धार कर दिया। ये सारे उद्यान को उपचित हो गए भगवान की लीला शक्ति से ये काम हुआ पूछना के द्वारा वसुर के द्वारा फिर बारा गए। अब वो पूछना आगे बढ़ी तो जहाँ पर मैदान था कोई प्राणी नहीं, भगवान ने ये योजना की किसी भी प्राणी की मृत्यु न हो जाए, उस पर तो वहां जाकर के और पूछना का शरीर उत्तान भाव से पड़ गया, सीधा पड़ गया, कोई जीव जंतु की हत्या नहीं, कोई नहीं बड़ा। मैदान में जाकर जब पूछना का ये सब जरा भगवान तो वहीं बैठे अपना खेल रहे, बच्चे स्थल पर बैठे खेल रहे, उधर उन गोपियों की दशा जहां वो उड़ी और जहां वो तूफान सा चला कि यशोदा मैया और रेणु तो मूर्ख दे देर पड़ी रही था, वो कभी मूर्खा नहीं थी, और गोपियां बड़ी बुरी दौड़ी मनाली कहां की शक्ति उनमें आ गई, ये तो उड़ी ऊपर से और वो दौड़ी नीचे से, श्री कृष्ण को ले गई पूछना, कृष्ण को ले गई, ये न मालूम कौन थी, श्री कृष्ण को ले गई। दशा से इन लोगों के मन में बड़ी पीड़ा हुई, अपने आप को भूल गई, मरना है तो जीना इनको याद नहीं रहा, और ये पीछे पीछे दौड़ पड़ी। पूछना गुरु अब पूछना का ये जो था बड़ा भयानक, हल्के समान उसके दांत, और पूछा ये कहीं पर इसका एक अंग भी गिर जाए तो सिला चूर्ण हो जाए, इसकी बड़ी बड़ी नासिकाएं, इनके दोनों स्तन मानो ऐसे मानो पहाड़ हो, इसकी नासिका की वायु से और बड़े बड़े जीव आकर के घुलियां ये वायु फीके तो नाक में कोई कोई जानवर आ पड़े और वायु निकले फिर बाहर जाके गिर पड़े, इस प्रकार की उसकी नासिका थी। अब तो वायु बंद नहीं हो गई, और इसकी दोनों आंखें जो थी वो मानो अग्नि के कुंड हूं, और इतनी समुद्र और मां और बसी हुई इतनी कि मानो वो अंधा कुआ ही हो। तो ये भगवान तो बालक होकर तो भी विश्वपालक अनंत ऐश्वर्यवान, पूछना के स्तनों को दोनों हाथ से पकड़ कर ये पूछ रहे थे, तो जिन स्तनों का आघात लगने से करोड़ों करोड़ों बालकों का देह कुचल जा सकता था उन पर ये खेलते रहे, लेकिन उनका कुछ भी बिगड़ा बिगड़ाया नहीं, वो उत्तान होकर के गिर पड़ा उसका देह और भगवान वहीं पर खेल रहे, ऐसे खेल रहे मानो कोई तालाब हो और तालाब का जल सूख गया हो और उसके अंदर बड़ी भारी बड़ा भारी खड्डा हो, तो इस प्रकार से पूछने का देह पड़ा हुआ हाथ पर उसके फैले हुए और भगवान जो है उसके दक्षस्थल पर खेल रहे। तो उधर से वो गोपियां दौड़ी, सब दौड़ करके ये पूछना जो ही पहुंची यहां पर क्यों वे आ पहुंची, आकर के उन्होंने देखा पत्मानों की तब्दे तजद्दूतंतरग्रमान सूर्मयामाशराजेन्द्र महादास तजद्भुतम। पूछना के शरीर में गिरते गिरते भी सकोश के भीतर के वृक्षों को कुचल डाला, बड़ी भयानक अद्भुत घटा हुई घटना हुई। ईशा मातृदृष्टाश्रम गुरुकंदरमाशितम बिंदुशलिष्ट नम्रोद्रम सकीर्णाभम, बड़ा भयानक इनका इसका शरीर का ये वर्णन हो चुका। अंधकूपतभूराक्षम कुमारो भूषणम बद सेतुरम, इसके आंखें कुएं के समान गहरी थी, नितंब इसके पैर की तरह से भयानक थे, बुझाए जांघें पैर ये नदी के पुल के समान और सूखे हुए सरोवर की माटी जान पड़ते थे। सूचना के इस शरीर को देख कर जो ग्वाल बाल और गोपियां जो भागी हुई आई संतृष्ट स्मृत दीक्षा गोपा गोप्य कलेवर पूर्वं कन्मिश्रण भिन्न कर्म मस्तका है। ये देखा इन्होंने आकर के तो बहुत डर गए। तो पहले से जो सुल्लाह सुनी थी बड़ी जोर की चीत्कार उसे सुनकर के उनके हृदय प्राण और चित्त पहले से फट रहे थे। अब इन्होंने देखा इस रूप में तो और भी डरे। बालंत तस्यावृषी हिरंत मकुतो भयं गोप्य सूर्मन संसद्येत्य जगृहुर्जात संभ्रमाः। तो गोपियों ने देखा दौड़ी हुई जो आई कि श्री कृष्ण बालक तो खेल रहा है, जरा सा कोई इस पर कोई आघात भी लगा मैं मानू कि जैसा वहां खेल रहा था वैसे ही मजे में खेल रहा। मेरे भाई अकुतो भय कहीं भय का नाम निशान नहीं। तो पूतना के दक्ष स्थल पर खेलते हुए भगवान मानो मन ही मन ये सोच रहे थे स्तनंदस्य स्तनयोग जीविका दत्त स्वया सच माननीय मम मया चीतो मृतिया किम वा नमाग स्वयं कक्षता। मेरे भाई पूछना बता मेरा क्या दोष है, मैं तो दूध हुआ बच्चा हूँ, दूध पीने वाला बच्चा हूँ, यही स्तनपान मेरी जीविका है, किसी का जीता हूँ मैं, और तो मेरे पास खाने पीने को आता नहीं और तुमने स्वयं मेरे मुंह में अपना स्तन दे दिया। मैंने तो लिया नहीं और मैंने स्तन पी लिया। मैं जब हुआ बच्चा दूध पी करके जीने वाला तुमने मेरे मुंह में स्तन दिया मैंने दूध पिया। अब बताओ अब तू दूध पीने से मर गई तो मेरा क्या अपराध है। इस प्रकार भगवान मानो कह रहे थे और भगवान को वरदान की बात याद रही। वो रत्न रत्नमाला रत्नावली बारी वाली बात बलि की पुत्री रही तो भगवान ने उसका दूध भी पिया और हलाल भी किया और उसका उद्धार भी किया। तो गोपियों ने देखा कि ये मेरे भाई खेल रहे हैं तो गोपियां पहुंची थी उन्होंने आकर जो खेल रहा है तो बोले इसको उठाओ पहले जिंदा और खेल रहा है। तो गोपियों ने लपक के इसको उठा लिया गोदी में लेके देखेंगे कहीं लगे नहीं तो सिर पर हाथ छोड़ा और यूं देखा ये बड़े मजे हंस रहा है वैसा का वैसा रिश्त पुष्ट ये है जिनको छवि का अच्छा लेकिन बड़ा अच्छा लगता है। वहां का जैसा थी वहां रोहिणी मैया और यशोदा मैया तो पड़ी थी बेहोश उनको गोद में ले जाना है। तो रक्षण घोड़े सम्यक गो पुष्प भ्रमण आदि हूँ यशोदा रोहिणी ध्यान का समन बाल स्वतंत्रता है रक्षण घोड़े सम्यक गो पुष्प भ्रमण आदि गोमूत्र में स्नापय्वा पुनः घोड़े सार्वकम रक्षाम चक्रता नाम भी। ये गोपियां दौड़ी लेकर के अब इनको थकावट वकावट नहीं है सारी थकावट मिट गई कृष्ण मिल गए जिंदे मिल गए कुछ वन इनका बड़ी प्रसन्नता मारे प्रसन्नता थे। ये लोग वहां से दौड़ी यशोदा तो रोहिणी के पास आ गई। अरे मेरा इंसान सुंदर को ले देख तो यशोदा मैया देख रोहिणी देख आंख खुल गई अरे आ गया आंख खुल गई। अब मैया ने देखा गोपियों से कहा बोले भाई पहले काम करो मालूम कौन राक्षस का क्या था अब बच्चे की रक्षा का पहले उपाय करो पीछे दूसरा। तो सारे तो गाय को लाए बोले अच्छा गाय को लाए उसकी पूंछ घुमाओ पहले तो गाय के नीचे ले जा करके भगवान के सारे अंगों पर गाय की पूंछ फिराओ पूंछ घुमाओ गाय की पूंछ से रक्षा की। और फिर ये भगवान फिर ये बोले अब क्या बोले स्नान कराओ गोमूत्र से और कोई उपाय नहीं रक्षा का तो गोमूत्र से स्नान कराओ। फिर बोले अब क्या लगाओ ये पाउडर वाउडर नहीं तो साबुन से नहीं धोया उनको ये सब अब अपवित्र चीजें हैं गोमूत्र से स्नान कराया और फिर ली गौरज गायों के चरण की धूल जो रही वो ले करके सारे अंगों में लगाई।
और फिर गोबर लेकर के भगवान का नाम ले लेकर के अंगों की रक्षा करने लगी। भगवान के 24 नामों से भी अंगों की रक्षा होती है। तो भगवान का नाम लेकर के दो भेद होते हैं, 24 करते हैं 12 करते हैं भगवान, कोई 12 अंगों से करते हैं, कोई 24 अंग करते हैं, कोई जो जो नाम साथ लेते हैं वो एक नाम लेते हैं। तो अंगों में गोबर लगाई, गोबर लगाया और भगवान केशव आदि का नाम लेकर के तो अंगों की रक्षा के अंग न्यास किया, करण न्यास किया, गोमूत्रेण प्रापयित्वा पुनर्गोर्ज सारभकम रक्षा सकृष्ट सकृता ध्वज सांगेश नाम भी गोच संस्कृत सलिला अंगेशु करयो पृथक निश्चात्मन्य बाल से बीजन आसम कुर्वत। इसके बाद गोपियों ने आसमन करके अजाज भगवान के 11 नामों से बीज मंत्रों से अपने शरीरों में अलग अलग अंग न्यास कर्म न्यास किया, फिर बालक के अंग भी न्यास किया, पहले अपने अंग सुरक्षित हो तभी किसी के अंग रक्षा करें। ये कहने लगी, अव्याज जोंघ्री मणिमास्तव जानव थोरु यज्ञो चक्रपतम जठरम हयास्य सुकेशवस्त दुरहीशम इनस्तु कंठम विष्णुर्भुजम मुखमुरुक्रमईश्वरकम चक्रद्रतस्तु सह गजो हरिस्तु पश्चात त्वत्पार्श्वे पार्श्वयो रणधनवसी मधुभाजनश्च कोणेषु शंख उरुगाय उपरीतेन्द्र कारक्षर चतुहर भरस्पुरुष समन्तात् इंद्रियान् ऋषिकेशः प्राणान् नारायणो वतु एकदीप प्रतिष्ठितम् मनोयोगीश्वरो वतु। ये कवच है, कृष्ण गर्भस्थिते बुद्धिमात्मानं भगवान् परं क्रीडन्तं पातु गोविन्द शयानं पातु माधव भजन्त मद्याज वैकुंठ आसीनं त्वां श्रियपति भुञ्जानं यज्ञ भुक् पातु सर्वग्रह भयंकर जाचिन्नो याचि धान्यश्च कूष्मांडा येरभक्तग्रहाः भूत प्रेत पिशाचाश्च यक्ष रक्षो विनायकाः कोचरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादयः उन्मादा ये यपस्मारा देह प्राणेन्द्रिय द्रुह स्वप्न दृष्टा महोत्पाता वृद्ध बाल ग्रहाश्च ये सर्वे नश्यन्तु ते विष्णुर नाम ग्रहण धीरवाः। बालक पर विपत्ति आ जाए तो विपत्ति नाश का ये उपाय था पहले, विपत्ति नाश का ये उपाय, सारे उपद्रवों के नाश का ये उपाय। तो गोपियां यशोदा मैया ये सब शास्त्रों को जानने वाली तो वे कहने लगी, अंगों की रक्षा करने लगी, अजन्मा भगवान हैं, अब ये इस बच्चे के पैरों की रक्षा करें, मणिमान घुटनों की, यज्ञ पुरुष जांघों की, अच्युत भगवान कमर की, हयग्री श्याम के पेट की, केशव हृदय की, ईश बक्षस्थल की, सूर्य गले की, विष्णु बाहों की, उरुक्रम मुख की और ईश्वर उर की रक्षा करें। ये सारे अंगों का किया। अब दिशाओं वो कहते हैं कि चक्रधर भगवान रक्षा के लिए तेरे आगे आगे रहें, गदाधर श्रीहरि पीछे रहें, क्रमशः धनुष और खड्ग धारण करने वाले भगवान मधुसूदन और अजन ये दोनों दोनों बगल में रहें, शंखधारी उरुगाय भगवान चारों कोनों में रहें, उपेंद्र ऊपर, हरधर पृथ्वी पर और परम पुरुष भगवान तो ये सब और रक्षा करें। इसी के भगवान इंद्रियों की रक्षा करें, नारायण प्राणों की रक्षा करें, एकदीप के अधिपति भगवान शुक्र की रक्षा करें, योगेश्वर मन को बचाएं, कृष्ण गर्भ तेरी बुद्धि की रक्षा करें और परमात्मा भगवान तेरे अहंकार की रक्षा करें, खेलते समय गोविंद रक्षा करें, सोते समय माधव रक्षा करें, चलते समय वैकुंठ बचाएं, बैठते समय भगवान श्रीपति तुम्हारी रक्षा करें, भोजन के समय सारे ग्रहों को भयभीत करने वाले यज्ञ भोक्ता भगवान रक्षा करें, दाचिनी राक्षसी कूष्मांडा आदि बालग्रह भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस
विनायक कोठरा रेवती पूछमा ज्येष्ठा ये जितनी मातृकाएं हैं और शरीर प्राण और इंद्रियों का नाश करने वाले ये उन्माद उन्माद राक्षस होता है पागलपन अपस्मार मिर्गी रोग ये जितने रोग हैं इन सब रोगों में और स्वप्न में देखे हुए जो महान उत्पात वृद्ध ग्रह और बाल ग्रह ये सारे के सारे भगवान विष्णु के नामोच्चारण करने से सब के सब भयभीत होकर के नष्ट हो जाएं। इस प्रकार से भगवान के नाम ले लेकर बालक के अंगों की उसकी दिशाओं की उसके सारे समय की उसके सारे के सारे कार्यों की रक्षा की। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इति प्रणवबद्धा भर गोपी भी कृतरक्षण पायित्वा स्तनम माता सन्निवेशात्मज। अब तक मैया ने बोबा नहीं दिया कल नहीं पिलाया रक्षा हो जाए उसके बाद पिलावे ना। तो इस प्रकार गोपियों ने प्रेम पास में बांध कर भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की। अब यशोदा मैया ने पुत्र को स्तन पिलाया और फिर धीरे से पालने पर सुला दिया थक गया होगा। अरे इतनी देर तो राक्षसी के वक्ष स्थल पर रहा और ये नारायण ने बचा दिया बच्चे को नहीं तो बच्चा थोड़ा ही आज तो सुला दिया। इधर तो ये हुआ उधर नंद बाबा जो हैं पाव नंदा जय गोपा मथुराया ब्रजंगता है विलोक्य पूतना जय हम बभूर त्रिविस्मता है। नंद बाबा उसी समय गोकुल से वो मथुरा से गोकुल पहुंचे। इन्होंने दूर से आवाज से सुनी थी आवाज सुनी तभी उन्होंने देखा बोले भाई बस दो सच बोलने वाला है किसी कुछ उत्पाद जरूर हुआ है तो ये पूतना के भयंकर सिंह को देखा उपनंदा जी सब खड़े थे ये सब आ गए तो किसी तो लौट गए ना आराम से। अब सारे गोप सारे ग्वाले सारे उपनंदा जी सब प्रसन्न है खड़े अब तो सोच रहे हैं इस पूतना के देह को जलाने कैसे बड़ा भारी इतना लंबा चौड़ा दे कहीं आग लगा दी तो कितनी लकड़ी कहाँ से लावे इतनी और इतना लंबा देह कितनी दूर में जलावे इसको। तो वो सब सोच रहे थे तो इधर वसुदेव जी महाराज विचार कर रहे थे पास आ गए कि भाई ये वसुदेव जो है ना ये मालूम होता है कि ये कोई देवता है। नूनम बतर्ष संजा तो योगेशो व समासत सैव दृष्टो हितपा तो यदाधान का दंड होगी। कहने लगे आपस में बड़े आश्चर्य की बात है कि वसुदेव के रूप में किसी योगेश्वर ने किसी ऋषि ने ही जन्म लिया है और असंभव है कि ये पहले कोई योगेश्वर रहा योग भ्रष्ट को ही आ गया हो। ये वसुदेव योगेश्वर मालूम होता है क्योंकि इसने पहले कह दिया था इसको दूस बड़ा उत्पाद हो रहा है तो यहाँ उत्पात हो रहा। ब्रजवासी ने सोचा कि अब क्या करें इसको जलाने कैसे। नंद बाबा जो दूर से बात कर रहे करके इन्होंने सोचा क्या क्या करें इतने बड़े शरीर को अब जलाएं कैसे। तो बोले एक काम करो इसके टुकड़े कर करके और ढेर लगा दो और चारों तरफ छाने रख दो गोबर से और एक सहारसा कर दो उसमें आग लगा दो थोड़ी दूर में ऊँचा होगा क्योंकि आकाश बड़ा ऊँचा है ये फैल जाए यहीं दूर तक नहीं तो गांव तक को ले लेगा इतना बड़ा शरीर उसका तो ये ठीक नहीं। तो उसको उन्होंने कहा एक काम करो कलेवरम परशुभिक्षित्वा तत्ते दूरे छित्वा यदहम काश्मीर कृतम। ये सोच करके उन लोगों ने ब्रजवासियों ने कहा ठीक यही करो। तो सब कुल्हाड़ी ले आए। अब भजने कितनी कुल्हाड़ियाँ क्या जितनी ले हजारों कुल्हाड़ियाँ लेकर के सब गोप पहुँचे और पूछना सिर्फ टुकड़े टुकड़े कर दिया काट काट करके और काट करके जब अब वो टुकड़े को उठाने में कौन नहीं तो उठे कैसे उठा उठा के टुकड़ों को दूर गोकुल से ले गए दूर ले जा करके रख करके चारों तरफ लकड़ियाँ लगा दी और लकड़ियाँ लगा के उसमें आग लगा गोबर के खाने लगा दी।
अब महाराज बड़ी विचित्र बात वहां पर एक और हुई। दह्यमानस्य देहस्य धूमस्य गुरु सौरभः उत्थित कृष्ण निर्भुक्त सपद्या हतपात पापमणः। शरीर जलने लगा, धुआं निकला। अब धुएं में से अगर किसी दिव्य सुगंध फैल गई चारों तरफ, नंद बाबा अगर दूर से आ रहे, बोले ये यज्ञ कहाँ से होने लगा और ये तो दिव्य गंध है, ये बात क्या हुई? सुखदेव जी कहते हैं कि भाई क्या बात हुई, तुम लोग बताओ समझो, इसका दूध किसने पिया था? भगवान ने जिसके शरीर पर इतनी देर तक अपने आप को आसन बना के और शरीर को रखा और अपने उस पर बैठ रहे, जिसके शरीर को भगवान ने इतना आसन बना लिया तो जिसके दूध को भगवान ने पिया, भगवान का स्पर्श से इसके सारे पाप नष्ट हुए और पूतना से पाप ही नष्ट नहीं हुए, पूतना में तो भगवान का भाव आ गया, पूतना के अंदर भगवान ने प्रवेश कर लिया, तो भगवान की अंग गंध जो थी वो सारी पूतना के अंग में समा गई। इसलिए ये पूतना जो है ये परम भाग्यवती सुगंधवती हो गई, इसके रोम रोम से सुगंधी निकलने लगी, तो धुआं सुगंध से भर गया, चारों तरफ धुएं की सुगंधी फैल गई। पूतना बाल लोक बालक नहीं रात से रुझरा था, जिघान सयाति हरई सनम दत्वा कदगतिम। पूतना जाती पूतना एक राक्षसी, फिर ये लोक बालक ही लोगों के बच्चों को मार डालना और खून पीना ये उसका काम, और भगवान को भी वो अकस्मात में इच्छा से मारने के लिए आई थी, तन पे लाया, फिर भी भगवान ने उसको वो परम गति दी जो सत्पुरुषों को प्राप्त होती है। अब इस श्लोक की व्याख्या सरकार और ये
सिंधु अनत रही तो भासिं नंद भवन भरपूरी उमग चली, ए नंद भवन भरपूरी उमग चली, ब्रज की बीथिन फिरती बही
गलियों में नदी बहने लगी,
ए ब्रज की बीथिन फिरती बही भासिंधु देखी जाय आज गो गो कुल में, देखी जाय आज गो कुल में, घर घर बेचत फिरत दही, घर घर बेचत फिरत दही, सो शोभा सिंधु कहाँ लगी तहो बना बनाय बहुत विधि एक तन मुख ते सहुन बही कहाँ लगी कहो बना हाय बहुत विधि कहाँ तन मुख से सहुन बही जसुमति उदर अगाध उदधिते जसुमति उदर अगाध उदधिते उपजी ऐसी सबन कही उपजी ऐसी सबन कही सूरदास प्रभु
उतना के शरीर का खंड खंड करके जला दिया गोपों ने और उसके पिता के धूम्र से धुएं से दिव्य सुगंधि फैल गई। अब सुखदेव जी महाराज भगवान की कृपा का वर्णन करते हैं। भगवान के साथ किसी प्रकार भी संपर्क हो जाए किसी का भी, तो उसको परम लाभ होता है, इसका वर्णन करते हैं। तो कहते हैं उतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिर आसना, भाई कोई जात से अच्छा हो, कुल से अच्छा हो, आचरण अच्छे हो, खान पान अच्छा हो, स्वभाव अच्छा हो, तो इनको लेकर के किसी की भलाई होना संभव है। तो पूतना के लिए कहते हैं कि पूतना में तो सभी बातें विपरीत। कहते हैं कि भाई पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिर आसना, पूतना का कुल, पूतना का आचरण, पूतना का भोजन, ये सभी ऐसा जो किसी प्रकार से भी शुभ नहीं कहा जा सकता। भाई बाणासुर को जब भगवान मारने लगे तो भगवान को याद आ गई प्रह्लाद वाली बात, तो उन्होंने कहा प्रह्लाद आय बड़े भक्त न गभ्यो मे तवान वया, भाई तुम्हारे वंश में जो जन्म ग्रहण करेगा उसको हम मारेंगे नहीं। तो अच्छे कुल के कारण से बाणासुर बच गया। तो इसका तो कुल राक्षस कुल, परंपरा से इनके इसके कुल में पूतना इत्यादि जो ये राक्षसियां हैं इनके कुल में तो परंपरा से ही कोई अच्छा पैदा हुआ ही नहीं। और बोले भाई कुल किसी का खराब भी हो और यदि वो अच्छा काम करे तो अच्छा हो सकता है। चंडा एक दुज श्रेष्ठ हरि भक्ति परायण, भगवान की भक्ति किसी में हो जाए और वो कुल से जात से चांडाल भी हो तो वो श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि उसका काम अच्छा, आचरण अच्छा। और ये तो लोक बालक नहीं, बिना किसी प्रकार का अपना पराया देखे बच्चों की हत्या करना, बच्चों का खून करना, ये इसका आचरण, यही इसका काम। इसका संसार में घूमना रहना केवल बच्चों को मारने के लिए ही, ये इसके महान दुष्ट आचरण। बोले भाई अच्छा खान पान करे सात्विक, तो उसकी बुद्धि सात्विक हो, तो कहीं उसमें सात्विकता अन्न से भी आ जाए तो ये रुधिराशन। खून ही खाना पीना इसका काम, बच्चों को मारे और खून पीरे। इस पर टीकाकार लिखते हैं कि लोग इस बात को प्राय भूल जाते हैं कि अन्न का असर होता है। ये जिस प्रकार का अन्न भोजन होता है, जिस प्रकार की चीज हम खाते हैं, उसी प्रकार की हमारी बुद्धि बनती है। तो खान पान में सात्विक वस्तुओं का ग्रहण करना और तामसिक का त्याग करना ये बड़ा आवश्यक है, क्योंकि खाई हुई चीज से ही रक्त मांस मेद मज्जा इत्यादि बनते हैं। तो बहिर्मुख जीव जो होते हैं वे लोग खान पान में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं करते, जो मन में आता है सो खा लेते हैं। भक्त सात्विक भोजन करे और वो भोजन भी करे भगवान के भोग लगाकर। भगवान का जो नैवेद्य भक्षण है ये बड़ा पुण्य का कार्य है। अभिष्टुम सहस्त्रेस्तु वाजपेय शतैरपि तत्फलम प्राप्यते नूनम विष्णु नैवेद्य भक्षणात्। कहते हैं कि हजारों हजारों अभिष्टों सैकड़ों सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने से जो फल मिलता है वो भगवान का नैवेद्य प्रसाद लेने से मिलता है। तो भगवान के प्रसाद लेकर भगवान का भक्ति भोग लगाकर भगवान का प्रसाद रूप में सात्विक अन्न खाए तो उसका उसकी बुद्धि शुद्ध होती है। पर इसके तो पूतना के जीवन में तो सिवा मनुष्य का खून पीना, इसके सिवा दूसरा भोजन इसका नहीं। तो रुधिरासना पूतना लोक बालक नहीं राक्षसी रुधिरासना जात से राक्षस पूतना इनका इनकी जाति बालकों के का खून करना इनका काम और रुधिर पीना इनका भोजन। तो ऐसे ऐसी जो नीच है उस नीच की भी सदगति में कोई बाधा नहीं आई और सदगति भी ऐसी कि क्या ठिकाना वो। और फिर एक बात और, ये जो आई सो आई भी बुरी नीयत से विधानसया भगवान को मार देने की नीयत से आई, तो बुरी नीयत से आई और कुल बुरा आचरण बुरा भोजन बुरा ये सब होने पर भी और इसकी सदगति हो गई। क्यों हो गई? स्तनम दत्वाप सदगतिम, ये उत्तर दे दिया सुखदेव जी ने ही कि पूतना ने नंद नंदन को स्तन दान किया इसी से सदगति प्राप्त हो गई। और सदगति भी ये पुण्य के फल रूप मिलने वाले स्वर्गाज नहीं, सतानाम भक्तानाम गतिम प्राप्त श्री गोविंदम, ये जो भगवान के चरणों की उपलब्धि है भगवत लोक में जाना ये इसे प्राप्त हो गया। तो ये क्यों हो गया? तो कहते हैं कि भाई किसी प्रकार से भी हो ये भगवान के साथ संपर्क हो जाना चाहिए। इसके मन में तो आया ना कि जरा दूध पिला दें, दूध में जहर मिला जरूर, तो इसलिए भगवान के संपर्क की इच्छा ने ही इसको सदगति प्राप्त करवा दी। तो फिर कहते हैं कि भाई और क्या हुआ, बोले और इससे बड़ी बात क्या होगी कि जो भगवान के चरण युगल कमल केवल भक्तों के ध्यान में आते हैं, प्रेमी भक्तों के सिवा भक्तों को भी नहीं मिलते। चरण युगल की सेवा प्रेमी भक्तों के सिवा और भक्तों को भी नहीं मिलती, और उनके चरण कहीं बक्षस्थल पर टिक जाए ये तो प्राय होता ही नहीं, असंभव बात। ये तो भक्तों के हृदय में ही केवल रहते हैं भगवान के चरण कमल पदभ्याम प्रतिष्ठाभ्याम। तो वो जो भगवान के चरण कमल हैं जिनका जिन पर नित्य पार्षदों के सिवा किसी का भी अधिकार नहीं, ब्रह्मा शिव ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले ये सब भी नंद नंदन के चरणों का वंदन करते हैं, सेवाधिकार नहीं प्राप्त करते। तीर्थास्पदम शिव ब्रह्मचरितम शरण्यम,